आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है सोशल साइंस, और हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। और हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट श्री विवेक सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, नमस्कार। आज हम माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करेंगे और हमारी चर्चा का विषय होगा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। शिक्षार्थियों, आपने अपने आसपास के परिवेश को देखा होगा और ये भी देखा होगा कि कैसे आपके आसपास विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हों, पशु हों, मनुष्य हों, या बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हों जो कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। ये सभी एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और मनुष्य भी अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी रूप से इनसे जुड़ा हुआ है। चाहे हमें स्वच्छ हवा की प्राप्ति करनी हो, चाहे हमें भोजन के लिए खाद्य पदार्थ की प्राप्त करना हो, पोषक तत्वों के लिए चाहे हमें दूध अंडा आदि की प्राप्त करना हो, तो ये सभी हमारी आवश्यकताएं हमारे परिवेश से जुड़ी हुई है और वहीं से इनकी पूर्ति भी होती है। एक मनुष्य के रूप में हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जहां इन पर निर्भर हैं, वहीं हमारी गतिविधियां इन्हें प्रभावित भी करती हैं। प्रभाव इस रूप से होता है कि कई बार हम अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत ज्यादा चारण करते हैं, यानी हम वहां जो घास के मैदान है वहां पे जानवरों द्वारा ज्यादा मात्रा में चराई की जाती है, कई बार वनों को काटा जाता है, खनिजों का दोहन होता है, या कल कारखानों के द्वारा जो धुआं निकलता है उनसे हमारा पर्यावरण और ये जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जहां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस परिवेश पर निर्भर है, इन जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर निर्भर है, वहीं हमारी गतिविधियां इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती है। साथ ही आपने शिक्षार्थियों ये भी देखा होगा कि किसी एक खास तरह के जीव जंतु आपके क्षेत्र में नहीं मिलते, यानी वो एक मिश्रण है, बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी, चाहे वो जीव की हो, जीव जंतुओं की हो या पेड़ पौधों की हो, और ये सभी मिलकर ही हमारे उस क्षेत्र को एक विशिष्ट स्वरूप देते हैं, वहां पर जैव विविधता बनाते हैं और उस विविधता के बीच में ही एक मनुष्य के रूप में हम रह रहे होते हैं। तो ऐसी जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, कैसे हमारी गतिविधियां इनसे प्रभावित कर रही हैं और कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, ये सारे बिंदु आज हमारी चर्चा में शामिल होंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जैव विविधता आखिर है क्या, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि जैव विविधता क्या है, तब तक शायद उसे हम ना तो समझ पाए और ना ही हम उसके संरक्षण का प्रयास कर पाए। तो जैव विविधता को अगर आप देखें तो ये जैविक विविधता का एक संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में जीवन के जो विभिन्न रूप हैं वो कैसे परस्पर साहचर्य में रह रहे हैं। तो जैव विविधता वास्तव में किसी एक क्षेत्र विशेष के पारिस्थितिकी तंत्र, वहां पर पाई जाने वाली जैविक प्रजातियों और उनके जीन की विशेषताओं का एक मिश्रण है। तात्पर्य यह है किसी क्षेत्र विशेष में वहां के विशिष्ट पर्यावरणीय घटकों, तापमान, जैसे तापमान है, मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, इन सब के संदर्भ में जब एक प्रजाति विकसित होती है, वहां वो बढ़ती है, उसमें जीन की एक विशेष संरचना रहती है और वो प्रजातियां उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक के साथ जो उनका साहचर्य है, जो उनके साथ अंतःक्रिया है, उसके द्वारा वो एक विशिष्ट रूप से उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं और उस क्षेत्र विशेष को एक विशेष रूप प्रदान करती है। तो जैविक विविधता या जैव विविधता वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, उनकी जीन संबंधी विशेषताओं और उनके वृद्धि और विकास का एक रूप है। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि कौन से तत्व सम्मिलित हैं। हमने पहले तो बात की जीन की। जीन से तात्पर्य है कि किसी एक ऐसी जैविक इकाई जिसमें कि जीन आनुवांशिकता होती है, यानी उसमें एक जीन संरचना का एक विशिष्ट स्वरूप होता है जो कि उसी प्रकार की प्रजाति में पाया जाता है। दूसरी है प्रजातियां। प्रजातियां एक ऐसा समूह है जीवों का, जिसमें कि जो सामान्य विशेषताएं हैं वो एक जैसी होती हैं, और उस प्रजाति में के द्वारा वो उसी प्रकार की विशेषताओं वाली नई नए जीवों का निर्माण होता है, यानी उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्रकार की विशेषताओं वाली जीवन का की उत्पत्ति होती है। और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जैसे बात करते हैं, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है कि जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटकों और उनके बीच की जो अंतःक्रिया है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये तीनों ही चीजें मिलकर जैव विविधता का निर्माण करती हैं। अब इस जैव विविधता में पौधे और जीव जंतु जो हैं वो उसकी एक इकाई है, यानी जैव विविधता एक वृहद रूप है, और उस जैव विविधता में जीव जंतु पेड़ पौधे और उनके मध्य की अंतःक्रिया ये सम्मिलित है। अब जैव विविधता का भारत के संदर्भ में क्या स्थान है, यानी भारत में किस प्रकार की जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो एक विशेषता है भारत की, खासकर हमारी जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है वो भारत की जैव विविधता में एक बड़ी मात्रा होने का एक बड़ा कारण है। अगर आप देखें तो भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है, जबकि 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच की इसकी स्थिति है, यानी एक वृहद क्षेत्र में भारत की स्थिति है। साथ ही इसका जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो इसे भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के आसपास इसकी स्थिति को दिखाता है। अब यहां पर होता क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है, जैसे आपने भारत में अनुभव किया होगा कैसे हमारे यहाँ वर्ष मौसम के तीन विशिष्ट रूप जो ग्रीष्म शीत और वर्षा देखने को मिलती है। साथ ही दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से में एक अलग प्रकार की जलवायु वर्ष भर पाई जाएगी, वहीं अगर आप उत्तरी क्षेत्र में आए तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ अत्यधिक गर्मी भी पड़ेगी और अत्यधिक ठंडी भी पड़ेगी, साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों और दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्रों में वर्षा की एक बड़ी मात्रा, साथ ही पूर्वोत्तर में भी काफी ज्यादा मात्रा में वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो भारत में जैव विविधता के स्वरूप को विकसित होने का एक आधार प्रदान करती है। अगर आप भारत में देखें तो बहुत ही समृद्ध जैव विविधता है। अगर हम भारत की कुल क्षेत्रफल और विश्व के संदर्भ में पाई जाने वाली जैव विविधता के प्रतिशत को देखें तो भारत बहुत ही समृद्ध है। अगर आप देखें तो भारत कैसे, अगर हम भूमि क्षेत्र की बात करें तो केवल 2.4% भूक्षेत्र भारत में पाया जाता है संपूर्ण विश्व का, लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो यह प्रतिशत 8% के आसपास, यानी विश्व की कुल जैव विविधता या जैव प्रजातियों का जो 8% हिस्सा है वो भारत में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कम क्षेत्र में हम भारत में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब अगर इसको देखें कि जैविक प्रजातियों में क्या है, तो लगभग विश्व की कुल 6% प्रजातियां जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं, जो कि यूएनईपी का आंकड़ा है। इसके अलावा 45,000 पौधे पूरे विश्व में हैं, जिसका लगभग 12% भारत में पाया जाता है। इसी तरह भारत में अगर 12 जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र हैं, विश्व में 12 जैव विविधता के आकर्षण केंद्र हैं, और उनमें से भारत में 2 पाई जाती है, यानी आप देखेंगे तो 12 में से 2 भारत में है, जो कि पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट है। तो इस तरह से देखें कि भारत की जो भारत का जो विस्तार है, भारत की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, ये सब मिलकर भारत को जैव विविधता में समृद्ध बनाती है। अब इसका महत्व क्या है, हम जब भी भौगोलिक घटनाओं स्थितियों और दशाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के संदर्भ में जैव जगत के संदर्भ में वो घटना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यानी वो मानव पर जैव जगत पर कैसे प्रभाव डाल रही होती है। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें तो ये वास्तव में जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, या कहें हम कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। शुरू में हम जब बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए इन पर निर्भर होते हैं और कैसे हमारी बहुत सारी गतिविधियां इसे प्रभावित करती है। तो अगर हम ये कहें कि हम इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हुए हम इन जीव प्रजातियों से और इन पादप प्रजातियों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। अब हम जब जैव विविधता की बात करते हैं या जैव विविधता को बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बात आती है कि कैसे हमारी जो अंतःक्रिया है, हमारा जो अंतः संबंध है प्रकृति के साथ, वो किस प्रकार का है, क्या वो सकारात्मक है या वो नकारात्मक है। सकारात्मक से तात्पर्य है कि क्या हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, या जिस मात्रा में हम संसाधनों का, प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, क्या वह उपयोग उन जीव जगत का या पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, यानी हम उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बच रहे हैं, या हम उनका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं और वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सकारात्मक संबंध बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तभी हम इनका उपयोग करेंगे और भावी पीढ़ी के लिए हम उन्हें बचा भी पाएंगे। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की बात आती है, सतत विकास की संकल्पना सामने आती है कि कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी इन संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रकृति के रोष का भी सामना करना पड़ता है। प्रकृति का रोष कैसे सामने आता है, आपने खबरों में देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि कैसे भारत के अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारी पर्यावरणीय जो आपदाएं हैं, हमें वो देखने को मिलती है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, या भूस्खलन, या इन्हीं के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं। लेकिन ये कैसे उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। किसी न किसी रूप में हम प्रकृति को दबाव डालते हैं कि वो ऐसी घटना, जैसे अगर हम बाढ़ की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हमने वनों का कटाव कर दिया, सिल्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में आ रहा है, नदी उथली हो रही है, या हमने बांध बना दिया, बांध के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, या हमने इतना अति कटाव कर दिया कि मौसम की दशाएं बदलने लगी। इस प्रकार से बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हैं जो कि प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। और यही सारी गतिविधियां और जो ये प्रकृति का जो एक रुष रूप है, वो जैव विविधता को प्रभावित करता है। लेकिन ये प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अगर जब हम बात करें, जैव विविधता महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसके द्वारा हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब पूर्ति किस रूप में होती है? पूर्ति हमें होती है कि हमें भोजन मिल रहा है, इससे हमें पानी की प्राप्ति से होती है, बहुत सारे रेशे हमें मिलते हैं, उन रेशे के द्वारा एक और कपड़ा बन रहा होता है, और बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे उत्पाद उससे बन रहे होते हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ईंधन के लिए, चाहे वो परिवहन के साधन हो, चाहे वो घरेलू उपयोग की आवश्यकताएं हो, चाहे बहुत सारे कल कारखाने चल रहे हों, उनकी प्राप्ति के लिए ईंधन भी हमें इसी जैव विविधता के जो तत्व हैं उनसे मिलता है। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे कैसे प्रकृति का जो एक नकारात्मक रूप हमें देखने को मिलता है आपदाओं के रूप में, यानी जैव विविधता भी इसके लिए इससे जुड़ी हुई है, और इनके अलावा भी वो हमें सीधे प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में आप देखें तो जलवायु में परिवर्तन आते हैं और उसके दौरान जो रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे अगर आप देखें तो जब मौसम बदलता है तो हम अक्सर सर्दी खांसी से प्रभावित होते हैं। मानसून के टाइम में जब अत्यधिक बारिश होती है तो उस समय हमें कई बार प्रदूषित पानी की वजह से पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य यह है कि इस जैव विविधता में जब भी असंतुलन की स्थिति बनती है तो हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही इस जैव विविधता के द्वारा हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हैं। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था कि कैसे हमारी गतिविधियां, हमारी जीवन शैली और हमारी जो अति आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम इन संसाधनों पर, इस जैव विविधता पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और तभी जैव विविधता में कमी का सामना हमें करना पड़ता है। जब ये कमी होती है तो कहीं न कहीं एक और प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर हमारे उपभोग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे या हम कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि जिस आधार पर हमें हम उत्पाद बनाते हैं, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो तो आधार समाप्त हो रहा है, यानी वो जैव विविधता समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पर निर्भर है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करें कि हम इसे लंबे समय तक बनाए रख सकें और इस जैव विविधता को समृद्ध रखें और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाए, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे प्रकृति के साथ सकारात्मक रूप से रखें और सामंजस्य बनाए रखें ताकि ये जैव विविधता भी बनी रहे। अब शिक्षार्थी, हमने ये तो समझा कि जैव विविधता कैसे आवश्यक है और हमारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति इससे होती है, लेकिन इसके साथ ही बात आती है कि जैव विविधता के जो प्रमुख दो घटक हैं यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, वो भारत में किस रूप में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे हम इनके इसके संदर्भ में हम समृद्ध हैं। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हम इन घटकों से ही करते हैं, चाहे वो हम भोजन के लिए, अन्य के लिए हम अनाजों पर निर्भर हों, दूध पर निर्भर हों, या जो हमें मांस मिलता है, या हमें जो अंडे मिलते हैं, या मछलियां, ये जो भोजन के लिए उत्पाद हैं। इसके अलावा औषधीय रूप से बहुत सारे तत्व हमें इन्हीं से मिलते हैं, चाहे वो जीव हों, जीव से मिलने वाले जो तत्व हैं, या जो हमें पेड़ पौधों से जो तत्व मिलते हैं उनके द्वारा औषधियों का निर्माण होता है, भवन निर्माण के लिए, बाकी जो परिवहन के साधन उनके निर्माण के लिए, और भी जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए बहुत सारी तत्व हैं वो हमें इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं के लिए इन पर निर्भर है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की क्या स्थिति है, जीव जंतुओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में अब हम आगे आपसे बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें प्राकृतिक वनस्पतियों की, तो किसी भी देश की जो संरचना है वो उसका आधार ही भूमि है, क्योंकि एक जो भौतिक स्थिति है वही किसी देश को एक स्वरूप प्रदान कर रही होती है। तो हम भारत को देखें तो कैसे भारत, जैसे मैंने हमने शुरू में बात की कि भारत की स्थिति ऐसी है और इसका विस्तार इतना है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायविक दशाएं पाई जाती हैं। जब विभिन्न जलवायविक दशाएं पाई जाती हैं तो हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का हम यहाँ पर विस्तार भी पाते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति जैसे हम देखें तो निर्भर होता है भूमि पर, मृदा पर, तापमान, वर्षा और जो स्थलाकृतियां हैं उन पर। तो ये सभी चीजें मिलकर, यानी भूमि, प्राकृतिक दशाएं, साथ ही अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में स्थिति, ये सब मिलकर भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार करते हैं। अगर आप देखें तो भारत में आपको एक और घने वन देखने को मिलेंगे, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, अंडमान निकोबार हो या पूर्वोत्तर में हो, वहीं आपको थार का मरुस्थल जैसा रेगिस्तानी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा जहां पर दूर दूर तक केवल बालू है। एक और आपको अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, वहीं आपको शीत मरुस्थल भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से भारत का ये विस्तार भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के स्वरूप को निर्धारित करता है। अगर हम मोटे तौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो ये पांच प्रकार की पाई जाती है। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारी वन और हिमालयी वन। अब इनमें हम सबसे पहले बात करें अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, जैसा नाम से स्पष्ट है कि एक तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरा ये सदाहरित होते हैं, यानी इनमें वर्ष भर पत्तियां रहती हैं। अब इस प्रकार के वन के लिए जो जलवायविक दशा है वो ये है कि इसके लिए पूरे साल गर्म और नम जलवायु चाहिए होती है, ताकि वर्ष भर पेड़ जो है वो हरे बने रहें, नई पत्तियां आती रहें। एक इसका ये पर्णपाती वनों से इसलिए भिन्न है क्योंकि पर्णपाती वनों में एक विशिष्ट मौसम में वो अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, जबकि सदाबहार वनों में ऐसा नहीं होता है। ये वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और भारत के सबसे ऊंचे पेड़ जो है वो लगभग इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 60 मीटर या इससे भी ज्यादा होती है। साथ ही इन घने वनों में मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी आपको एक तरफ अत्यधिक ऊंचाई वाले वन भी देखने को मिलेंगे, वहीं इसमें नीचे आपको बहुत सारी लताएं झाड़ियां भी देखने को मिलेंगे, यानी इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों की एक परतदार संरचना होती है, यानी निचले स्तर पर आपको घास देखने को मिलेगी, फिर उसके ऊपर बेल और लताएं हैं, उसके ऊपर बाद मध्यम ऊंचाई वाले वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद सबसे ज्यादा ऊंचे वाले जो कि 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंची वनस्पतियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें ना एक छोटे से क्षेत्र में आपको बहुत अलग प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जो अगर हम प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो आबनूस, महोगनी, रबर, जैक, बांस जैसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो आपको इस प्रकार के वनस्पति विस्तार वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो ये मुख्यतः वो क्षेत्र हैं जहां पर भारी वर्षा होती है, यानी पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्से में इस प्रकार के वनों का विस्तार देखने को मिलता है। ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि चाहे वो इमारती लकड़ी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के औषधि उपयोग वाले वृक्ष हो, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए हम बात करें जो दूसरा प्रकार है प्राकृतिक वनस्पतियों का, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब चूंकि जो इनकी स्थिति है यानी जो लोकेशन है वो लगभग एक जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों जैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो वर्षा है वो कम होने लगती है। ये वो क्षेत्र हैं जो 75 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा की प्राप्ति करते हैं। इन वनों की विशेषता ये है कि वर्ष के एक विशिष्ट समय में एक बार ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब अगर इनकी हम भौतिक वितरण की बात करें तो दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूरी तट के कुछ हिस्सों को छोड़कर ये लगभग पूरे देश में पाए जाते हैं और ये वही वन क्षेत्र हैं जो कि मानव की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित हैं, यानी हमें वनों के कटाव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसा कि ये उतने सघन वन तो हैं बट अपेक्षाकृत सदाबहार वनों की तुलना में देखें तो ये थोड़े से कम पाए जाते हैं और इनका मुख्यतः जो विस्तार है वो अगर आप देखें तो हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्गीय जो मध्यवर्ती भाग है उसके पर्वतीय क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। साथ ही चूंकि जैसे हमने कहा कि 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित है तो यहां पर भी इसका दो प्रकार पाया जाता है। पहला तो है वो क्षेत्र जिन्हें हम आर्द्र पर्णपाती कहते हैं और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन वो क्षेत्र है या वो वन है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की प्राप्ति होती है। हमारे देश के पूर्वी भाग, हिमालय की तलहटी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों के जो प्रमुख इस वनस्पति के जो प्रमुख वन वृक्ष हैं वो है सागौन, बांस, शाल, सीसम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, जामुन, महुआ और शहतूत जैसे वृक्ष हैं जो कि आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। दूसरा शुष्क है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन वो उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा की प्राप्ति होती है। इनका मुख्यतः जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें सागौन, साल, पीपल और नीम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है कटीले वनों का। अब जैसे आप देखें तो इन वनस्पतियों में आप देखें कि कैसे वर्षा की कम होती मात्रा भी एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति स्वरूप को निर्धारित करती है। अब कटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कि 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इनकी विशेषता यह होती है कि यहां पर कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाए जाते हैं। यहां पर जो जलवायु है वो घने वनों के लिए अनुकूल नहीं है। तो एक तो यह होता है कि कांटेदार वन होते हैं, पत्तियों की मात्रा, पत्तियों की जो पत्तियों का जो आकार है वो छोटा होता जाता है, साथ ही अपेक्षाकृत घने वन नहीं होते। आप देखें कैसे कटीले वने कुछ क्षेत्र में आपको दूर दूर वृक्ष मिलेंगे और उतने सघन भी नहीं रहेंगे। अगर आप देखें इनके विस्तार की बात करें तो पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। अब अगर हम इनकी, जैसे हमने कहा कि इनकी जो संरचना की जो विशेषता वो यह है कि इनकी ऊंचाई कम होती है, कांटे होते हैं, पत्तियों का आकार बहुत छोटा होता है, साथ इनकी जड़ें जो होती है वो गहरी होती हैं ताकि वो गहराई से भी जल की प्राप्ति कर वहां पर सर्वाइव कर सके, वहां पर वो विकास वृद्धि कर सके। इनकी अगर हम वनस्पतियों के प्रकार की, इस वनस्पति प्रकार में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं अगर हम उनकी बात करें तो इनमें अकालिया, बबूल, कैक्टी, खैर, खजूर, ताड़ जैसे वृक्ष हैं जो कि कटीले वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है ज्वारी वनों की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एक तो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाएंगे, दूसरा ये अपेक्षाकृत आर्द्र भूमियां हैं। तो अगर आप देखें तो भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर एक तो आर्द्र जलवायु है, साथ ही पानी की अधिकता है, तो यहाँ पर आपको मिट्टी गीली रहेगी, गादनुमा रहेगी और साथ ही धरातल पर पानी का जमाव एक बड़े क्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वहां उनकी जो जड़ें हैं वो जल में रहकर बढ़ने वाली होती हैं। यानी आप देखेंगे तो कैसे गाद वाली मिट्टी के क्षेत्र में भी ये जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और वहां पर वो बढ़ती रहती हैं। विशेष रूप से अगर आपने मैनग्रोव देखा हो, यानी जिसे हम सुंदरी वृक्ष कहते हैं, ये ज्वारी वन का एक प्रमुख रूप है। साथ ही आप देखेंगे कि एक तो इनकी जड़ें मोटी रहेंगी, वो पानी में फैली रहेंगी, साथ इनकी जो पत्तियां हैं वो मोटी होती हैं और ये सदाबहार बन रहते हैं, यानी इनमें हमेशा हरियाली रहती है। इन वनों का विस्तार आप देखें तो सुंदरवन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी नदियों के तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन की सबसे बड़ी विशेषता मैनग्रोव है, यानी सुंदरी है। आप देखें कैसे इसके नाम पर ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा इन सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण। और ये वृक्ष वास्तव में अगर आप देखें तो ये तटीय क्षेत्र में कटाव को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक और विशेषता है, भारत का तटवर्ती क्षेत्र कई बार चक्रवातों से प्रभावित होता है और इसके साथ ही आपने सुनामी के बारे में सुना होगा कि कैसे सुनामी के दौरान बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में जब ये ज्वारी वन है वो एक अवरोधक का कार्य करते हैं। जब भी तेज सागरी लहरें उठती हैं वो सबसे पहले इस ज्वारी वन से, यानी सुंदरी वन से ही टकराती हैं और उन सागरों का जो प्रभाव है, सागरी लहरों का जो प्रभाव है या उसकी तीव्रता है, ये उसको कम करती हैं। तो तटवर्ती क्षेत्र में एक तरह से अवरोधक का कार्य करते हैं जिससे इन ऊंची लहरों का या इनका जो नकारात्मक प्रभाव है और उससे बाढ़ की जो समस्या होती है उसे ये कई बार बड़ी मात्रा में कम भी कर सकते हैं। यही कारण है कि ज्वारी क्षेत्रों में इन वनों को संरक्षित करने और उनको विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आती है हिमालयी वनस्पति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो वनस्पतियां हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं और जहां पर तापमान कम होता है। मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी ढलानों में इस प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यहां पर शिक्षार्थियों एक और विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि जैसे अगर आप देखेंगे कि हिमालय में अलग अलग ऊंचाई वाली पर्वत है। अगर आप शिवालिक से हिमाचल की ओर जाएं तो कैसे आप देखेंगे कि कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर पर्वत है। कुछ शुरुआत वाले जो कम ऊंचाई के पर्वत है वो हिमाच्छादित नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखें तो अपेक्षा 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में आपको गर्म जलवायु और अधिक मात्रा वर्षा की मात्रा वाले वनस्पतियां मिलेंगी। यहाँ पर सघन वन मिलेंगे आपको और ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन जैसे लगते हैं। यहाँ पर साल और बांस प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं जहां पर सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वनस्पतियां मिलती है जिनमें ओक और चेस्टनट प्रमुख है। पूरी हिमालय में ही एक ही ऊंचाई पर आपको उपोष्णकटिबंधीय वन भी देखने को मिलेंगे जिनमें मुख्यतः चीड़ पाए जाते हैं। इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 1500 से 3500 की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको 100 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र मिलेंगे जहां पर ओक, लॉरेल, चेस्टनट, देवदार, सीडर, स्प्रूस जैसे वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे ऊंचाई के साथ वनस्पतियों का स्वरूप बदल रहा है, साथ ही इनका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो इनकी जलवायु में परिवर्तन ला रहा है और इस प्रकार हम इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये वो क्षेत्र हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में वनों के कटाव और चारागाह के प्रयोग की वजह से ह्रास की समस्या अनुभव कर रहे हैं। ये तो बात थी वनस्पतियों की। अब आइए हम देखें भारत में वन्य जीवों की बात करें तो भारत में जैसे हमने शुरू में बात की कि कैसे वनस्पतियों के साथ ही वन्य जीवों की प्रजातियों में भी भारत समृद्ध है। और अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर लगभग ज्ञात पौधे और जानवरों की लगभग 80% जो प्रजातियां हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में पाया जाता है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे मानवीय गतिविधियां बार बार वनस्पतियों को और वन्य जीवों को प्रभावित कर रही हैं और हमें इनकी संख्या में ह्रास भी देखने को मिलता है। यही कारण रहा कि 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा वन्य जीवों को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जिसके द्वारा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की स्थापना की गई और इनकी मात्रा धीरे धीरे यानी इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अगर आप देखें तो अनुमानतः भारत में 551 वन्य जीव अभयारण्य, 96 राष्ट्रीय उद्यान, 25 झील और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ 33 बोटेनिकल गार्डन और 275 से भी ज्यादा प्राणी उद्यान है और ये जो संख्या है वो बढ़ती ही रहती है क्योंकि कई बार कई अलग अलग क्षेत्र संरक्षण के दायरे में आते हैं और वहां पर नेशनल पार्क या अभयारण्यों की स्थापना या प्राणी उद्यानों की स्थापना की जाती है। हाँ, इनका उद्देश्य यही है कि इनके द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए ताकि वो लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल न होने पाए या जो प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई हैं या खतरे में हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इस प्रयास के लिए ही इनकी स्थापना की गई है। आइए हम बात करें भारत के वन्य जीव अभयारण्य को। वन्य जीव अभयारण्यों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वन्य जीवन को बनाए रखते हुए हम वहां पर विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित करने का हम प्रयास करें। यानी जो वन्य जीव अभयारण्य होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट प्रकार की वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर हम भारत में देखें तो लगभग 2000 से भी ज्यादा पक्षी, स्तनधारियों की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां, कीड़ों की लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्रजातियां और पौधों की लगभग 15,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इन अभयारण्यों में हम एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, साइबेरियन क्रेन जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बात आती है नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क वास्तव में वन्य जो अभयारण्य है उनसे बड़ा क्षेत्र है। अभयारण्यों का जहां एक विशिष्ट उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट प्रकार की प्रजाति को संरक्षित करने का, जबकि नेशनल पार्क का उद्देश्य व्यापक होता है। वो एक बड़े क्षेत्र में उनकी प्राकृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए वन्य जीवन को वो संरक्षित करते हैं। 1970 में जहां पे भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, और आज आप इनकी संख्या देखिए कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दाचीगाम, कार्बेट, दुधवा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, भरतपुर, मानस, सुंदरबन, गीर, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उद्यान हैं जो एक बड़े क्षेत्र में वन्य प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आर्द्र भूमियों की। आर्द्र भूमि यानी वो क्षेत्र जहां पर झील या दलदली क्षेत्र हैं, और इन दलदली क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। जैसे हम कह रहे थे कि कैसे आर्द्र जलवायु भूमि में जहां पर दलदली क्षेत्र हैं, वहां पर विशिष्ट प्रकार के वन, जैसे मैनग्रोव वन है, अब उनके साथ वहां पर विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां जीवों की भी रहती हैं। जैसे आप सुंदरबन में देखें कैसे रॉयल बंगाल टाइगर वहां पर एक बड़े क्षेत्र में रह रहा होता है। तो इसके अलावा, ये तो वन्य जीवों की बात भी थी, इसके अलावा इन आर्द्र भूमियों में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे आप देखें तो वाटर लिली है, कॉन्टेल्स है, सेज है, ब्लैक स्प्रूस है, साइप्रस है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु सहचर्य में रह रहे होते हैं। साथ ही ये आर्द्र भूमियां दो प्रकार की भी देखने को मिलेगी आपको। एक तो है जो मीठे पानी वाली हैं, यानी झीलें हैं, दूसरा जो सागर तटवर्ती क्षेत्र है जो कि नमकीन पानी के क्षेत्र हैं। तो इस तरह से इन आर्द्र जलवायु में भी हम विभिन्न प्रकार के जीव जगत को हम विस्तारित होते देखते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो भारत में जो प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं वो अष्टामुड़ी है, चिल्का झील है, कोलेरू है, लोकतक है जो मणिपुर में है, पॉइंट कालीमर तमिलनाडु में है, पंजाब में हारेक झील है, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये कुछ नाम है। इसके अलावा ये बड़ी संख्या में भारत में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्रों का तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवों की विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। भारत में 15 जीव मंडल सुरक्षा के क्षेत्र हैं, जिनमें कि ये जीव क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान, ये जो वन्य अभयारण्य है उनका भी अंग हो सकते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य है कि पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की जैव विविधता को संरक्षित करना, क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल जो टिकाऊ जीवन है उसे बनाए रखना, और पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ साथ अनुसंधान और उसकी जागरूकता को भी बनाए रखना। भारत के जो प्रमुख जैव जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र उनमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, दिहांग और दिबांग घाटी के क्षेत्र प्रमुख है। अब जैव आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में जैसे हमने शुरू में कहा कि हम एक तो अपनी आवश्यकताओं के लिए हम निर्भर होते हैं। अगर हम देखें तो वनस्पतियां जैव विविधता का प्रमुख घटक है, तो चाहे वो जानवर हो, सूक्ष्म जीव हो, वो सभी किसी न किसी रूप में एक जो वृहद चैन है, श्रृंखला है, उसका हिस्सा है। और कोई भी जीव अगर श्रृंखला से बाहर होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पौधे जो है वो हमारी मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो हमें वन कटाव की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। वनस्पतियां जो है वो जल चक्र का अभिन्न हिस्सा है, साथ ही वो जल कटाव को भी रोक होने नहीं देती है। प्रकाश संश्लेषण के भी वनस्पतियां आवश्यक हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, मतलब ये बहुत सारे हैं। देखें आप, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी न किसी रूप से वन्य जीवन पर निर्भर हैं, चाहे वो स्वच्छ जल वायु की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, भोज्य पदार्थ की आवश्यकता हो, या पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता हो। हम इनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब हम लंबे समय तक इन्हें बचाए रख सके। तो अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हम एक सतत विकास की संकल्पना को भी चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपने बहुत उपयोगी जानकारी सुनी होगी, और साथ साथ जैव जगत के संरक्षण की दिशा में आप अपनी भूमिका निभा भी पाएंगे और प्रयास कर भी पाएंगे। धन्यवाद।